श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने इस अध्ययन में देखा है कि परमेश्वर के दास यशाया अपनी भविष्यवाणी के द्वारा नाश और अंत के समय की बातें कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें और हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से उनकी रक्षा करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव में है या किसी प्रकार की समस्याओं में है। पिताजी, आप उन पर भी अपने अनुग्रह प्रदान करें, ताकि वे भी आपकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर सकें। इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज के अध्ययन में हम अध्याय 32 से आरंभ करेंगे। इस अध्याय का ध्यान फिर से दूरस्थ भविष्यवाणी की ओर जाता है। आने वाला राजा, महाक्लेश का युग, आने वाला आत्मा, पांचवी और छठवीं हाय के मध्य यह अध्याय आशा की किरण है। यह उस समय अंधकार से घिरे मनुष्य के लोगों के लिए एक प्रकाश की किरण है। राजा का व्यक्तित्व हमारे सामने काफी समय से प्रकट नहीं हुआ है। यहाँ हम उसका परिचय एक बार फिर से देखते हैं। उसके बिना न तो सहस्त्र वर्षीय राज्य होगा और न ही इस पृथ्वी पर आशीषें होगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे राज करने वाला राजा। यशाया की पुस्तक 32 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। यह पद प्रभु राज की ओर निहारता है। यह राजा हमारा प्रभु यीशु है। उसके राज की मुख्य बात धार्मिकता होगी। इस पृथ्वी पर आज तक ऐसा राज्य नहीं हुआ है। यशाया की पुस्तक 32 अध्याय उसके दो पद में लिखा है, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। प्रभु यीशु राजा मात्र ही नहीं, एक उद्धारक राजा होगा। उसने हमारे लिए पाप के दंड की आंधी और तूफान उठाए। वह हमारी सुरक्षा की चट्टान है। जी हाँ, यशाया के पुस्तक 26 अध्याय उसके चार पद में लिखा है, सनातन चट्टान, उसे सनातन चट्टान कहा गया है। यहाँ चट्टान की उपमा में उसकी सेवा का एक और परिप्रेक्ष्य है, वह विश्वासियों के लिए छिपने का स्थान है। यशाया के पुस्तक 32 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सब लोगों को आत्मिक बुद्धि प्रदान की जाएगी। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। जी हाँ, उस समय सच्चा आत्मिक सदाचार प्रकट होगा और परखा जाएगा। उस समय जो मुख्य बात है वही मुख्य बात होगी। आज नैतिक मान्यताओं का स्थान नहीं है। हमारे स्कूलों में क्रमिक विकास सिखाया जाता है जिसे मनुष्य पशु बन गया है। सदाचार की शिक्षा अब समाप्त हो गई है। यदि आप कानून व्यवस्था और नैतिकता की बात करेंगे तो आपको मूर्ख समझा जाएगा। आपको आज के परिष्कृत दुष्टों की तुलना में बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। अतः आज की मानसिकता ऐसी ही हो गई है। इन दकियानुसी बातों पर ध्यान मत दो, परंतु यही दकियानुसी पुरानी बातें भावी बातें होंगी, क्योंकि पृथ्वी पर धार्मिकता का राज करने वाला राजा होगा। उस समय सदाचार की मान्यताएं फिर से लौट जाएंगी। यशाया की पुस्तक 32 अध्याय के 5 पद में लिखा है, मुड़ फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूस दानी कहलाएगा। ध्यान दीजिए, मुझे यह अत्यधिक मनभावन लगता है, यह अत्यधिक आधुनिक विचार है। आज धनवान जन मुक्त विचारक हैं, क्यों? उनके पास काला पैसा या धन है। धनवान मुक्त विचारक हो सकता है। लाजर एक धनवान मनुष्य के गिरे हुए टुकड़े को खाया करता था। वह धनवान मनुष्य मुक्त विचारक था। वह अपने टुकड़ों से दया प्रदर्शन करता था। आज गिरा हुआ मनुष्य उदार जन कहलाता है, परंतु उस युग में गिरे हुए मनुष्य को उदार नहीं कहा जाता था, क्योंकि उसकी वास्तविकता को देखा जाता था। जी हाँ, वह एक दुष्ट है, उसका मन पाप से भरा है। मनुष्य का मन दुराचारी है। उस भावी दिन सबके सच्चे रंग दिखाई देंगे। उस समय सदाचार का झूठा दिखावा नहीं होगा। मनुष्य जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, चाहे आप हो या मैं। स्वांग रचने की आवश्यकता नहीं होगी। आडंबर का मुखौटा उतार दिया जाएगा। यह सबके लिए है, केवल विश्वासियों के लिए ही नहीं। ढोंगी कलीसिया में ही नहीं है, वे सब झूठी दिखावा करते हैं, सब ढोंगी हैं। मेरे मित्रों, यह सब धार्मिकता के राज करने वाला राजा के युग में होगा। हम देखेंगे कष्टों का पूर्व काल। प्रभु यीशु के राज्य में पूर्व कष्टों का समय होगा, महाक्लेश का समय। यशाया के पुस्तक 32 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, हे सुखी स्त्रियों उठकर मेरी सुनो, हे निश्चिंत पुत्रियों मेरे वचन की ओर कान लगाओ। ध्यान दीजिए, वह ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि स्त्रियों का पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील होना स्वाभाविक है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा संकट का आभास अति शीघ्र हो जाता है। मेरे मित्रों, प्रत्येक पुरुष को किसी भी प्रकार का समझौता करने से पूर्व अपनी पत्नी को उस पार्टी में या उस पार्टी से भेंट करवा देना चाहिए। वह उसके स्वभाव और चरित्र का अत्यधिक मूल्यांकन कर पाएगी। अपने घर में मैं घर के मुखिया की भूमिका निभाने का प्रयास अवश्य करता हूँ, परंतु मुझे बहुत पहले से ही यह बोध हो गया है कि मैं मनुष्य को परख नहीं सकता। मेरी पत्नी हर बार मुझसे कहती है कि आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए। मैं किसी पर भरोसा कर लेता हूँ या किसी भले मनुष्य पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ, जबकि वे अति भले मनुष्य होते हैं। अतः मैंने एक भली बात सीख ली है कि सबसे अच्छा काम है कि मैं अपनी पत्नी की बात मानूं, विशेष करके किसी के स्वभाव को परखने में। परमेश्वर कहता है कि महाक्लेश से पूर्व स्त्रियां ऐसी मूर्ख हो जाएंगी कि वे आने वाले संकट को समझ नहीं पाएंगी। यह बड़ी रोचक बात है कि उस समय स्त्रियां भी ऐसे भोग विलास में रहेंगी कि उन्हें आने वाले संकट का भनक भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आत्मा की प्रतिज्ञा। अब हम तीसरे भाग में आते हैं, अंतिम दिनों में आत्मा का अवतरण। यशाया की पुस्तक 32 अध्याय के 15 पद में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। यहां आपको परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी का विकास देखने को मिलेगा, जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। आत्मा कब उंडेला जाएगा? प्रभु यीशु के सहस्त्र वर्षीय राज्य में आत्मा उंडेला जाएगा। वह समय आत्मिक आशीषों और मसीह की ओर उन्मुख होने का एक महान युग होगा। जी हां, उस समय वह व्यक्तिगत रूप से राज्य करेगा। इसका अर्थ यह न समझें कि उस समय प्रत्येक घुटना उसके सामने झुकेगा। प्रत्येक घुटना तो अंततः उसके सामने झुकेगा, परंतु वह समय परखे जाने का समय होगा। येवेल जो नबी है इसका उल्लेख करता है, येवेल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 28 और 29 पद में, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में आत्मा उंडेलूंगा। मेरे मित्रों, यह आने वाले राज्य का दर्शन है। यह भविष्यवाणियां न तो पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई और न ही तब से अब तक पूरी हुई है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 15 से 21 पद में पत्रस येवेल 2 अध्याय उसके 28 29 की व्याख्या करता है। पत्रस ने नहीं कहा कि पेंतिकोस्त के दिन येवेल की यह भविष्यवाणी पूरी हुई है, परंतु पेंतिकोस्त येवेल द्वारा व्यक्त अनुभव जैसा है। उस दिन आत्मा से भर जाने वालों पर दोष लगाया गया था कि वे बहुत सुबह ही शराब के नशे में हैं। ऐसा आज होता है, परंतु पत्रस के समय लोग सुबह के समय शराब के नशे में नहीं होते थे। पत्रस कह रहा था कि पेंतिकोस्त के दिन जो हो रहा था वह प्रभु राज में भी होगा। युएल और पत्रस ने जो कहा वह प्रभु राज में होगा, जब परमेश्वर अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। पेंतिकोस्त के दिन कुछ ही लोगों पर आत्मा उंडेला गया था, परंतु वह वैसा ही था जैसा प्रभु राज में होगा। मेरे मित्रों, युएल की भविष्यवाणी एक अद्भुत परिघटना होगी। 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद में लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। मेरे मित्रों, अभी तक ये चमत्कार देखे नहीं गए हैं। ध्यान दीजिए कि युएल अध्याय 2 उसके 28 पद में कहता है कि उनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और उनके पुरनिय स्वप्न देखेंगे। आज हमारे युवा इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे पुरनिय तो गोल्फ खेल रहे हैं। ये भविष्यवाणी न तो पेंतिकोस्त के दिन पूरी हुई और न ही आज पूरी हो रही है। यह भविष्यवाणी प्रभु के राज्य की है। धर्मशास्त्र के कुछ पदों पर भविष्यवाणी का तंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ा संकट का काम है। हमें केवल परमेश्वर के वचन को एक एक पंक्ति, एक एक आदेश प्रकट होने देना है। जी हां, जैसा परमेश्वर कहना चाहता है, परमेश्वर हमें ऐसे ही भविष्यवाणी देता है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय 32 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ के देखेंगे अध्याय 33 से, जिसका विषय है परमेश्वर की प्रजा और देश को उजाड़ने वालों पर हाय। यह अध्याय विशेष करके उन लोगों पर दंड की घोषणा करता है जो परमेश्वर की प्रजा को हानि पहुंचाते हैं और उसके देश को उजाड़ते हैं। निकट भविष्य में वह अश्शूर का संदर्भ देता है और दूरस्थ भविष्य में अंतिम दिनों के शत्रु के विषय भविष्यवाणी करता है। इसमें मुख्य ध्यान के केंद्र देश हैं। बचने वाले भक्तों की मुक्ति की प्रार्थना को देखेंगे। यशाया की पुस्तक 33 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। मेरे प्रियो, यति महान आत्मिक सिद्धांतों को व्यक्त करने की यह यशाया की अपनी विधि है। यह सिद्धांत परमेश्वर ने उसी समय स्थापित कर दिए थे जब मनुष्य ने पाप किया था। गलातियों के पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में यह अति उत्तम रूप से व्यक्त किया गया है। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ नाश करने वाला सन्हेरीब है। उसने हिजकिया के राज करते समय आकर यरूशलेम को घेरा था। इसे हम यशाया के पुस्तक 36 और 37 अध्याय में पाते हैं। मेरे विचार में यह सब तर्क संगत विद्वानों का यही मत है। तथापि यह भविष्यवाणी अशुरों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर के कहने का अर्थ है, तुम मेरी प्रजा का विनाश करोगे तो मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। परमेश्वर अपने प्रजा का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। इस कारण हम विश्वासियों को अपना बदला परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि हमें बदला नहीं लेना है, वही बदला लेगा। परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, वह हमसे अच्छा काम करेगा। जी हाँ, यह उस अंतिम दिन का चित्रण भी है जब परमेश्वर पुनः स्थापित रोमी साम्राज्य को खड़ा करेगा और ख्रिस्त विरोधी इसराइल देश को नष्ट करेगा। परमेश्वर मसीह के आगमन पर इसको दंड देगा। अब इसके संबंध में हम यह प्रार्थना सुनते हैं। यशाया के पुस्तक 33 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोहते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। यह प्रार्थना उस समय के ईश्वर भक्तों और भावी समय के ईश्वर भक्तों की है। हम आगे देखेंगे संधि के दूतों का दुख भरा रोना। यशाया की पुस्तक 33 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, देख उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत विलक विलक कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। मेरे मित्रों, आप सोचेंगे कि हमने आज एक सबक सीख लिया है, परंतु हमने नहीं सीखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के संसार को गणतंत्र के लिए सुरक्षित बनाना चाहता, परंतु वे भूल गए कि उन्हें गणतंत्र को संसार के लिए सुरक्षित बनाना है। परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ संसार के तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। हम शांति स्थापित करने की बात करते हैं, परंतु परमेश्वर की विधि नहीं अपनाते। परमेश्वर के व्यवहार पर ध्यान करने की याचना को हम देखेंगे। यशाया 33 अध्याय के 13 पद में लिखा है, हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। यहां मनुष्यों के दो समूह हैं, दूर दूर के लोगों अर्थात अन्य जातियां, तुम भी जो निकट हो अर्थात इसराइल। यहां पुकार यह है कि वे परमेश्वर को पहचाने, उसको जाने कि वह कौन है। यशाया के पुस्तक 33 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, सियोन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तहीनों को कपकपी लगी है, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी न बुझेगी। मेरे मित्रों, सियोन के पापी, अभक्त इसराइली, प्रचंड आग, यह प्रकाशित वाक्य की आग की झील नहीं है, यह हमारा परमेश्वर है जो भस्म करने वाली आग है। वह पवित्र परमेश्वर है जो उस दिन दंड देगा। आज परमेश्वर विरोधी अभियानों का बहुतायत से विकास हो रहा है। यही कारण है कि हम परमेश्वर का वचन फैलाते हैं। हम नहीं जानते कि हम कब तक करते रहेंगे, परंतु जब तक प्रभु हमें समय देगा हम परमेश्वर के वचन का प्रसारण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके वचन को सुने, अपने मनों को फिराए। परमेश्वर का दंड आने वाला है और परमेश्वर की प्रजा को वचन के प्रसारण के प्रति सदा चिंतित रहना है। दंड एक मन भावन विषय नहीं है। जी हाँ, इसकी चर्चा करने से मित्रता नहीं बढ़ेगी। यह यशायाह के वचन तो हैं, परंतु संदेश परमेश्वर का है और वह चाहता है कि मानव जाति इसे सुने और उसकी ओर फिरे। यशाया 33 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, वह जो मसीह में विश्वास लाने के कारण धर्मी ठहराया गया है, वह धार्मिकता में आचरण करने के लिए बुलाया गया है, चाहे आप या मैं। उस भयानक दिन हम देखेंगे कि पाप बढ़ने के कारण अनुग्रह बहुत अधिक बढ़ गया है। अंतिम मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति को देखें। अब हम चौथे भाग में आते हैं जहां अंतिम मुक्ति के लिए परमेश्वर की स्तुति की जाएगी। यशाया के पुस्तक 33 अध्याय उसके 20 और 21 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और न कोई रस्सी कभी टूटेगी। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा, जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसमें होकर के जाएगा। मेरे प्रियो, बेबीलोन को परात नदी पर गर्व था, अशुरों को टाइग्रिस नदी पर गर्व था, मिस्र को नील नदी पर गर्व था, परंतु यरूशलेम में ना तो नदी थी और ना ही बंदरगाह था। परंतु जकरयाह कहता है 14 अध्याय उसके 4 से 8 पद में कि परमेश्वर प्रभु राज में इसराइल के लिए बंदरगाह उत्पन्न करेगा। मेरे विचार में भूकंप जिसका वहां उल्लेख है, उसके कारण भूमध्य सागर की वहां घाटी बनेगी और प्रभु राज्य में यरूशलेम एक बंदरगाह होगा। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि भविष्यवाणी का आत्मिक अर्थ भी है। वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा। परमेश्वर स्वयं इसराइल की सुरक्षा और आशीष का स्रोत होगा। यशाया की पुस्तक 33 अध्याय के 24 पद में लिखा है, कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह यरूशलेम का महिमामय भविष्य है। विश्वास वर्तमान कठिन परिस्थितियों के परे भावी महिमा को देखता है। यह वह दिन होगा जब यरूशलेम के पास अपना राजा शांति का राजकुमार होगा, जो पृथ्वी पर शांति लाएगा, जिसके लिए आज लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज मेरे लिए आपके लिए क्या ही सुखद बात है कि हम उस महान परमेश्वर के निकटता में आए जो शांति का राजकुमार होगा और पृथ्वी पर शांति लाएगा। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने फिर से अपने आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 1100019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। जब तू चले